नमस्कार भारत, मंगलवार 3 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका में खत्म हुआ भुगतान का संकट, राष्ट्रपति ओबामा ने किए 2 साल के बजट पर दस्तखत।
I very much appreciate the work that the Democratic and Republican leaders did to get this...
असम में बांग्लादेशी घुसपैठ पर दाखिल उपमन्यु हजारिका रिपोर्ट पर शुरू हुई सियासत। महागठबंधन और एनडीए के बीच बटी बिहार की राजनीति में अपनी जमीन बचाने में जुटे पप्पू यादव।
मेरी पार्टी कहाँ है वो तो तय जितनी बिहार की जनता करेगी, नौजवान करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे, वंचित समाज के लोग करेंगे, गरीब करेंगे, मेरे पास जात तो है नहीं इन लोगों की तरह।
महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली के स्थानीय निकायों के चुनाव में शिवसेना ने बाजी मारी। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पिछले सप्ताह पास किए बजट पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओवल हाउस में सोमवार को हस्ताक्षर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट न केवल उनकी सरकार बल्कि पूरी अमेरिकी जनता के लिए फायदे का सौदा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस बजट को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम किया। भारत प्रशासित कश्मीर के गुरेज सेक्टर में युद्ध विराम उल्लंघन के दौरान 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने दोपहर 12:30 बजे से 1:45 बजे तक अंधाधुंध फायरिंग की। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता करनाल जोशी ने इस बात की पुष्टि की। मारे गए 2 जवानों की पहचान तारिक अहमद लोन और वसीम अहमद लोन के तौर पर हुई। दोनों ही जिला बांदीपोरा के रहने वाले थे। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की एयरलाइन सेवा का कहना है कि विमान में कोई भी खराबी नहीं थी और विमान किसी बाहरी अवरोध की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। हालांकि मिस्र में मौजूद रूसी राजदूत सर्ज वी किरपीचेंको ने कहा कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि अभी विमान के ब्लैक बॉक्स मिले हैं और उनकी जाँच में कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा, ब्लैक बॉक्स की जांच निश्चित रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अभी अपने शुरुआती दौर में है। चूंकि इसकी जांच बहुत ही जटिल होती है, इसलिए इसमें कई हफ्तों का समय लग सकता है। इसलिए किसी को भी इतनी जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो जानकारी है वो सही है भी या नहीं। किसी चीज़ को बेवजह तूल देने का फ़ायदा नहीं है। मिस्र में मौजूद रूसी राजदूत सर्ज वी किरपीचेंको के शब्द। दुर्घटना के दौरान इस विमान में 224 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी। फ्रांस के शहर लियोन के पुलिस ने 2 फ्रांसीसी पायलटों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप था और ये डोमिनिशन रिपब्लिक भाग गए थे। पास्कल फॉरेट और ब्रूनो ओडोस नामक इन पायलटों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों के पास से पुलिस ने ड्रग्स से भरे 26 सूटकेस बरामद किए थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ने इनकी भागने में मदद की थी। पाकिस्तान की मीडिया नियामक एजेंसी ने प्रसारकों पर प्रतिबंधित चरमपंथी गुटों की गतिविधियां देखने पर रोक लगा दी है। इसमें उन संगठनों को भी शामिल किया गया है जो पिछले साल आए भूकंप पीड़ितों की सहायता में के काम में जुटे हुए हैं। जमात उद दवा जैसे संगठन आपदा के समय राहत के कामों में मदद करते हैं। जमात उद दवा का नाम अमरीका और संयुक्त राष्ट्र ने चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया है। वैज्ञानिक विचारों और विवेकपूर्ण सोच के खिलाफ भर्ती कथित असहिष्णुता के विरोध में पुरस्कार लौटाने के सिलसिले में सोमवार को एक और नाम जुड़ गया है। हिमालय इतिहास और पर्यावरण के विशेषज्ञ माने जाने वाले इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अगले 2 साल के बजट कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर ये कानून अमल में नहीं आता तो मंगलवार को अमरीकी सरकार के लिए भुगतान करना मुश्किल हो जाता। राष्ट्रपति ओबामा ने इसके लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें आगे भी इसी तरह साथ मिलकर चलना होगा। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2 साल के लिए बजट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार अपने भुगतान करने में असमर्थ होती। इस बजट को पिछले हफ्ते कांग्रेस ने पास किया था। इसके अनुसार अमरीकी सरकार अभी $8 अरब अधिक खर्च कर सकती है। बजट पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की इसी तरह से आगे भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा,
I very much appreciate the work that
मैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के ही नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे पता है कि उन्होंने इस बजट को मेरी टेबल तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि किस तरह से अमेरिका को काम करना चाहिए। साथ ही उम्मीद है कि हम देश की जरूरत के हिसाब से आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना अलग सोचते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। उन्होंने कहा कि ये बजट अमेरिकी जनता के लिए बहुत ही अच्छा है और सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। ओबामा ने कहा कि अमेरिकियों के लिए किसी क्रिसमस गिफ्ट से कम नहीं है। इस समय विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां मंदी का दौर ना चल रहा हो। ऐसे में ये बजट हमारी अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता लाएगा। ये बजट हमें एक जिम्मेदारी भरे पथ पर ले जाएगा। लेकिन इस मौके पर उन्होंने सजा काटने के बाद आम जिंदगी जीने की कोशिश में लगे लोगों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दोबारा से समाज में मिलाए जाने की जरूरत है। आंकड़ों के अनुसार अमरीका में हर साल करीब 20 लाख लोगों को जेल होती है और 6 लाख लोग सजा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आते हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें अपने फॉर्म पर एक बक्से पर निशान लगाना होता है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं। ओबामा ने कहा कि जो लोग अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें ये हक है कि वो एक आम जिंदगी जिएं और उन्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा,
There are people who have gone through tough times. They've made mistakes, but
कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कठिन समय का सामना किया होता है, जीवन में कुछ गलतियां की होती हैं, लेकिन थोड़ी सी मदद से वो सही रास्ते पर भी आ सकते हैं और हमें उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा और हमें इस बात पर भरोसा करना होगा और उसका प्रचार भी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। इस बजट के जरिए सरकार को सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखे लाखों तेल बैरलों और वायरलेस स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों को बेचने में आसानी होगी। इसके साथ ही आंतरिक राजस्व सेवा के लिए बड़ी कंपनियों के ऑडिट करना भी अधिक आसान हो जाएगा।
अमेरिका में खत्म हुआ भूटान का संकट जो मंगलवार को आ सकता था। रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के असम में हो रही घुसपैठ की जमीनी जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उपमन्यु हजारिका आयोग की रिपोर्ट पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी इस मामले को गरमाने में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे खारिज किया है। रिपोर्ट में कुछ स्वतंत्र सर्वेक्षणों के नतीजों के आधार पर कहा गया है कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रही तो 2047 में असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पूरे ब्यौरे के साथ गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के असम में हो रही घुसपैठ की जमीनी जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उपमन्यु हजारिका आयोग की रिपोर्ट पर राजनीति शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घुसपैठ को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मई महीने में वरिष्ठ वकील उपमन्यु हजारिका को जमीनी स्तर पर जाँच करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। महज 6 महीने के भीतर असम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हजारिका आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख घुसपैठ को भाजपा अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुख मुद्दा बनाना चाहती है। असम प्रदेश भाजपा के महासचिव विजय कुमार गुप्ता का कहना है,
ये एक तरह से डेमोग्राफिक इन्वेजन है और जब डेमोग्राफिक इन्वेजन होता है और ऐसे सेंसिटिव इशू जिससे कि भारतीय नागरिक अल्पसंख्यक हो जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।
वहीं इस रिपोर्ट को कोई खास अहमियत नहीं दे रही कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही भाजपा घुसपैठ जैसे मुद्दे को उठाकर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना शुरू कर देती है। असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रिपुन बोरा का कहना है,
कांग्रेस का स्थिति बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उपमन्यु हजारिका का जो रिपोर्ट है वो प्रोजेक्टेड है 2043 में। वो जो प्रोजेक्टेड है वो जो बिल्कुल 100% करेक्ट है ये बात नहीं है। उसके वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उन्होंने जाके वो अपना तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट किया है।
आरएसएस ने उपमन्यु हजारिका आयोग की इस रिपोर्ट पर हाल ही में देशव्यापी चर्चा का आह्वान किया है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ में असम की मूल जनसंख्या के 2047 तक अल्पसंख्यक बन जाने का खतरा पैदा हो गया है। असम में अल्पसंख्यक लोगों के समर्थन से बनी AIUDF का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे पर हिंदुओं को डराना चाहती है ताकि चुनाव के समय वोट बटोर सके। AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल कहते हैं,
रिपोर्ट जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अल्मानों को, वो उनको के कितने हो रहे हैं, बॉर्डर सील हुआ या नहीं हुआ, कुछ खास चीजों के बारे में उनसे पूछा गया था, उसकी रिपोर्ट हमारे पास भी है। तो उन्होंने जवाब देने में अपने जो लिमिट है उसको क्रॉस किया और ऐसी चीजों को टच किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा था। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है।
चौंकाने वाली इस रिपोर्ट को तैयार करने के सवाल पर आयोग के प्रमुख उपमन्यु हजारिका कहते हैं,
जब हम देखने गए वहाँ इंस्पेक्शन किया मई और जून महीने में तो उसमें ये साफ निकल के आया कि बॉर्डर खुला है, क्योंकि एक तिहाई बॉर्डर जो है असम और बांग्लादेश के बीच में वो पानी से है, मतलब ब्रह्मपुत्र और काफी नदियों के बीच में। उस बॉर्डर को आप कोई फेंसिंग ना किया जा सकता है, ना पेट्रोलिंग से ही किया जाता है, लेकिन पेट्रोलिंग में भी लोग सीमित है, वो बीएसएफ भी मानते हैं और वो असम केंद्रीय सरकार भी मानते हैं और असम सरकार भी मानते हैं। अगर ये बॉर्डर खुला है तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसकी ये जो आते हैं तो उनका संख्या कितना है, प्रवचन का तो कितनी सालों से हो रहा है, अब तो ज्यादातर जो घुसपैठ है वो ज्यादातर, तो जिस गति से असम में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रहा है उसने 2001 का तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ फिगर है उसने आगे तक बढ़ा के देखा, आका क्या है उसका ट्रेंड क्या निकल के आता है, वो 2040 तक संख्या लोग होंगे जो ओरिजिनल इंडिजिनस लोग हैं। इन्हीं का रिपोर्ट के बारे में मैंने रेफरेंस किया।
घुसपैठ पर चाहे कितनी भी राजनीति क्यों ना करे, लेकिन देश की जनता की नजर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी है। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को 5 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर इस सिफारिश पर जवाब देने का निर्देश दिया है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी हिंदी के लिए गुवाहाटी से।
राष्ट्रीय जनता दल से हटाए जाने के बाद पप्पू यादव ने बिहार में जन अधिकार पार्टी गठित की है। पांचवें चरण में कोसी क्षेत्र में भी मतदान होना है, जहां पप्पू का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ये चुनाव पप्पू के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम है। क्या चल रहा है पप्पू यादव के दिमाग में, बिहार के चुनाव में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर पंकज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट सुनिए।
राजनीति में पप्पू यादव का सफर किसी फिल्मी कहानी की तरह है, उठापटक, विवाद और गुमनामी के दौर से निकलकर वापसी की कहानी। लेकिन बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से हटाए जाने के बाद अपनी जन अधिकार पार्टी बनाने का फैसला एक बार फिर उन्हें राजनीति से गायब कर देगा या फिर वे मोल भाव करने की स्थिति में आएंगे, पप्पू यादव के सामने ये एक बड़ा सवाल है। पटना में उनके घर हुई एक मुलाकात में पप्पू यादव से बातचीत करने और उनकी मनःस्थिति भांपने का मौका मिला। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से हमेशा घिरे रहने वाले पप्पू यादव थके से नजर आए। शायद अपनी पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक होने का वे दबाव झेल रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार की थकान से ज्यादा मुझे वे परेशान नजर आए, चिंतित नजर आए। चुनावी नतीजों को लेकर उनकी बेसब्री साफ दिख रही थी।
मेरी पार्टी कहाँ है वो तो तय मेरे हाथ में है नहीं, बिहार की जनता करेगी, नौजवान करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे, वंचित समाज के लोग करेंगे, गरीब करेंगे, मेरे पास जात तो है नहीं इन लोगों की तरह। तो अब वो कितना मैं उनके लिए कर पाया हूँ और कितना मैं ट्रस्ट विश्वास उनके भीतर जगा पाया हूँ और कितना मैं जाति को तोड़ पाया हूँ, सक्सेस ना सक्सेस तो उसमें होगा, तो 8 तारीख के बाद होगा।
लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनके नेतृत्व को भी चुनौती दी थी। पप्पू यादव ने राज्य में महागठबंधन के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा बनाने की कोशिश में जीतन राम मांझी से एकजुटता दिखाई, लेकिन मांझी एनडीए की ओर चले गए। बातचीत के क्रम में ऐसा लगा कि जीतन राम मांझी से समझौता न होने की टीस पप्पू के मन में जरूर बनी हुई है।
मेरा एक प्रयास था जीतन राम मांझी और पप्पू यादव एक ताकत, क्योंकि मैं खड़ा रहा, लेकिन जितना माझी के साथ के लोगों को एनडीए ज्यादा पसंद आई।
पप्पू बिहार की राजनीतिक समीकरण में तीसरे मोर्चे के साथ हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी तो है लेकिन शरद पवार और तारिक अनवर की एनसीपी आखिरी क्षण में अलग हो गई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भाजपा समर्थक बयान को लेकर एनसीपी को अपने वोट बैंक की चिंता हो गई, लेकिन इसने पप्पू यादव की मुहिम को और भोथरा किया। पप्पू यादव शरद पवार पर जमकर बरसते हैं।
शरद पवार जी तो सबसे पहले महाराष्ट्र में बैठे थे, शिवसेना आपको सपोर्ट नहीं करेगी, हम हैं बैठे हुए, तो शरद पवार जी पहले ही महाराष्ट्र में सपोर्ट के लिए बीजेपी के साथ खड़ी है, और आप यहाँ पर द्वयम बात करते हो, मुलायम सिंह से बात करते हो। अब मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति पर आप आरोप लगाओगे, वो एक व्यवहारिक लीडर है, उनके कथनी करनी में फर्क नहीं, नीयत में फर्क नहीं।
युवकों, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों की बात करते करते पप्पू नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव पर सबसे ज्यादा चोट करते हैं।
ये नीतीश कुमार से बड़ा भाजपा ही दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, जिसने आरएसएस को गांव-गांव पहुंचाया, जो 17 साल गोद में बेनिफिट लिए, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा था, इनके तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनने के फुतूर जो चढ़ी तो अहंकार हो गया।
दरअसल लालू और नीतीश के साथ पप्पू के अनुभव अच्छे नहीं हैं। उनकी वो टीस उनकी बातों में दिखती है। नरेंद्र मोदी पर हमला, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश और मांझी को उनसे दूर ले जाने की उनकी पीड़ा को भी दिखाता है। दरअसल बिहार में अब दो प्रमुख गठबंधनों के अलावा जनता किसी मोर्चे या पार्टी की कम ही बात करती है। कुछ इलाकों, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रभाव को छोड़ दिया जाए तो यही स्थिति हर जगह है। समाचार एजेंसी पीटीआई के पटना ब्यूरो प्रमुख संजय कुमार सिन्हा।
चूंकि महागठबंधन और राजग गठबंधन में बहुत मतलब आमने सामने की लड़ाई हो गई है, ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं लुप्त होता मुझको बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वोट कटवा का इस बार कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो बाकी जगह तो नहीं मुझको प्रभाव लग रहा है। मगर कोसी में चूंकि उनका व्यक्तिगत नहीं है, एक पार्टी के रूप में नहीं, उनका व्यक्तिगत है, तो वहाँ मुझको लगता है कि जरूर वो कुछ वो कर पाएंगे।
आदर्श राजनीति की बात करते करते पप्पू यादव भी समर्थन देने के मुद्दे पर एक नया विकल्प उछाल देते हैं। कहते हैं,
देखिए जिन चीजों में बिहार का भला होगा, बिहार के समग्र विकास की बात होगी, संपूर्ण न्याय की बात होगी, आम आदमी का रेस्पेक्ट डेवलप होगा, जो मेरे एजेंडे हैं वो उस एजेंडे पर ही हम समर्थन लेंगे, देंगे नहीं किसी को, लेंगे अन्यथा चलेंगे फिर।
वैसे पप्पू यादव को ये भी पता है कि ऐसी स्थिति के आसार बहुत कम हैं। इस चुनाव में पप्पू का निशाना नंबर वन लालू यादव नजर आते हैं। उनके बेटों का वे बार बार जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बेटों के कारण ही लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाला। लेकिन पप्पू की ये निजी लड़ाई इस चुनाव में उन्हें कितना आगे तक ले जाएगी ये कहना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि पप्पू यादव के दिमाग में यही रणनीति चल रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं, पार्टी को स्थापित किया जाए और चुनाव बाद की स्थितियों में अपना पलड़ा भारी रखा जाए। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 52 सीटें हासिल की हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। वहीं कोल्हापुर में कांग्रेस ने 27 सीटें हासिल की है। चुनाव में किस पार्टी ने क्या खोया और क्या पाया, मुंबई से अश्विन अघोर से सुनिए।
महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे आज स्पष्ट हुए। सरकार की दो पार्टियां भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह चुनाव सभी के लिए इज्जत का मुद्दा बन गया था। सभी आला नेताओं ने कल्याण डोंबिवली तथा कोल्हापुर में ली चुनावी सभाओं में एक दूसरे की जमकर आलोचना की थी। इन चुनावों को 2017 में होने वाले मुंबई महानगर निगम चुनाव की लिटमस टेस्ट भी माना गया। इसी पृष्ठभूमि पर आज के नतीजे काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। कल्याण डोंबिवली चुनाव में पहली बार अकेले लड़ने वाली शिवसेना 52 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं भाजपा 42 सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। हालांकि बहुमत से शिवसेना 10 सीट दूर है, वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में चौगुनी जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में 27 सीटें जीतने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बार 9 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि भाजपा और शिवसेना को अलग अलग चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान नहीं उल्टा फायदा हुआ है। दोनों पार्टियों की सीटें बढ़ी है और जनाधार भी। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बुरी हालत हुई है। हालांकि ये कभी भी कांग्रेस का गढ़ नहीं था, मगर इस बार दोनों पार्टियों की सीटें काफी कम हुई है। अब कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सत्ता पाने के लिए शिवसेना तथा भाजपा दोनों को राजनीतिक जोड़तोड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकता। राज्य की राजधानी से सटे होने के बावजूद कल्याण डोंबिवली में ढांचागत सुविधाओं की हालत खस्ता है और इसे स्थिर सत्ता फायदेमंद साबित हो सकती है। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है यह देखना रोचक होगा। वहीं कोल्हापुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व सांसद सतेज पाटिल के नेतृत्व में 27 सीटें जीती है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की ससुराल और सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटिल का चुनाव क्षेत्र कोल्हापुर में स्थानीय इकाई में पैर जमाने की भाजपा ने पुरजोर कोशिश की है। स्थानीय दल तारारानी आघाड़ी के साथ गठबंधन किया, दोनों को मिलकर 32 सीटें मिली है। वहीं ताकतवर मानी जा रही NCP केवल 12 सीटें जीत पाई है। हालांकि यहां कांग्रेस NCP मिलकर आसानी से सत्ता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर भाजपा तारारानी आघाड़ी NCP के साथ मिलकर सत्ता बनाने के प्रयास भी कर रही है। अब भाजपा और NCP के बीच इस रिश्ते क्या सचमुच रंग लाएंगे यह देखना रोचक होगा।
मुंबई से अश्विन अघोर बता रहे थे कि महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 52 सीटें हासिल की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के बीरगंज में सोमवार को पुलिस फायरिंग में हुई एक भारतीय के मौत की निंदा की है। उन्होंने इसे लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से बात भी की। नेपाल के तराई इलाके के मधेशी प्रदर्शनकारी भारत की सीमा पर नया संविधान लागू होने के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जारी बातचीत में अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने काठमांडू में मौजूद बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता महेश आचार्य से बात की और पूछा कि फिलहाल वहां स्थिति कैसी है।
बीरगंज में जो नेपाल के सीमावर्ती शहर है, मुख्य बाजार है, उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। दोनों पक्ष के बीच वार्ता हो रही थी और दोनों पक्षों ने एक कहा था कि ये वार्ता सकारात्मक है और हम जल्दी ही बैठकर इस मुद्दे को हल कर लेंगे। लेकिन उसकी एक दिन बाद बीरगंज में जो घटना हुई उससे लगता है कि समस्या थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जो मधेशी मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं उनका सोमवार को एक प्रेस मीट था। मोर्चा ने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहा तो हम वार्ता से अलग रहेंगे, तो इससे भी प्रश्न होता है कि थोड़ा परिस्थिति बिगड़ गया है। और इसी सिलसिला में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के समकक्ष केपी ओली को फोन करके ये कहा कि वो बीरगंज घटना में जो भारतीय नागरिक मारे गए हैं उस घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। ये भी खबर है कि उस घटना के पूरे विवरण नेपाल दे दे, ऐसा अनुरोध था प्रधानमंत्री मोदी का।
बीरगंज जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, नेपाल में भारत की ओर से जो आपूर्ति होती है वो ज्यादातर सामान उसी रास्ते से आता है, क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इसका?
हाँ, ये प्रतिकूल प्रभाव तो दिख रहा है, क्योंकि नेपाल में ईंधन का अभाव है, जो पेट्रोल स्टेशन से उनके बाहर लंबी लाइन देख सकते हैं और यहाँ जो एलपीजी गैस है, कुकिंग गैस, वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि नेपाल के जो 70% डिमांड है ईंधन का वो रक्सोल नाका से ही आती है। और नेपाली पक्ष का ये कहना है कि भारतीय पक्ष ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वो नाका खोलने में नाकाम रहे हैं। लेकिन भारतीय पक्ष का ये कहना है कि वो नेपाली जो मधेशी मोर्चा है, मधेशी आंदोलनकारी है, उनके आंदोलन के कारण ये ठप हो रहा है। और इसी तरह से अगर समस्या ये समाधान होने की संकेत नहीं दिख रहे और इसी के कारण नेपाल में और अत्यावश्यक वस्तु जैसे कि मेडिसिन और खाद्यान्न भी ईंधन का अभाव ज्यादा गहरा होता जा रहा है।
जी महेश जी, ये डेडलॉक काफी लंबा होता जा रहा है, सरकार के पास कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा खाका है जिससे सबको रोका जा सके?
दोनों पक्ष ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो वार्ता से बाहर आएंगे। दोनों पक्ष ये जोर दे रहे हैं कि वार्ता से ही राजनीतिक मसले है, ये राजनीतिक मसले वार्ता से ही हल होगी। लेकिन जो दोनों पक्षों ने अड़ान रखा है सीमांकन के सवाल में, प्रदेश के सीमांकन के सवाल में, तो उसमें मीटिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी तक की जो परिस्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि जल्दी ही समस्या समाधान होने की कोई संकेत नहीं है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब रुख करते हैं अखबारों का। अमल चौधरी अखबारों पर नजर डालने के बाद स्टूडियो में हाजिर हैं। बताइए अमल, क्या है आज के अखबारों की सुर्खियां?
निखिल, आज तो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर केवल बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ही दिख रहे हैं।
50 साल के हो गए वो।
जी, लेकिन वजह उनके 50 साल होने की नहीं है, क्योंकि 2 नवंबर को उनका जन्मदिन तो था, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने देश के माहौल पर सवाल उठाए थे और कहा था कि
जो असहिष्णुता को लेकर,
जी जी जी, और उसी पर उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे माहौल बन रहा है। और इस खबर को लगभग अंग्रेजी और हिंदी के सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जाहिर है शाहरुख खान ने बयान दिया है तो सभी अखबारों में से आना ही था। और अन्य खबरों की बात करें,
क्या
तो
वो भी कोई पुरस्कार लौटाने जा रहे हैं क्या?
नहीं, उन्होंने कहा कि अगर अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है और अगर मिलता है तो मैं जरूर लौटाऊंगा।
लेकिन उन्हें पद्मश्री मिली हुई है कल एक, हाँ, हिमालय के जो वो,
जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर मुझे फिल्मों से जुड़ा अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो, अगर पहले मिले तो मैं जरूर लौटाऊंगा, उन्होंने ये कहा है। और अगर अन्य खबरों की बात करें तो वहीं देश में बढ़ते असहिष्णुता के मामले पर कांग्रेस आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेगी, जिसे नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किया है। वहीं एक तस्वीर है निखिल एनबीटी के पहले पन्ने पर जिसमें दिखाया गया है कि दिल्ली के चिड़ियाघर की एक तस्वीर है जिसमें एक सफ़ेद बाघिन है जिसका नाम कल्पना है। और
अच्छा, ये तो बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर
जी, इसमें अपने 4 शावकों के साथ है। और मतलब आपको ये भी पता है कि काफ़ी ये खत्म होती हुई प्रजाति है बाघों की, और इसको प्रकाशित किया गया है। और वहीं जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को असहिष्णुता पर उपदेश नहीं देना चाहिए, मोदी ने इसमें 84 के दंगों के लिए कांग्रेस को दागदार पार्टी बताते हुए ड्रामा ना करने की नसीहत इसमें दे डाली है उनको। वहीं नेपाल में अभी हिंसा के दौरान एक भारतीय की मौत को भी प्रकाशित किया गया है और दैनिक भास्कर ने उत्तराधिकार कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर को अपनी प्रमुख खबर बनाया है। खबर का शीर्षक है कि पिता की मौत 2005 से पहले तो बेटी प्रॉपर्टी में हकदार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2005 से लागू होगा। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स ने भी वन रैंक वन पेंशन की मांग उठाई है और सोमवार से उन्होंने भी 3 दिन का अभी फिलहाल धरना शुरू कर दिया है नई दिल्ली में। वहीं उबर दुष्कर्म मामले में भी कोर्ट का आज एक फैसला आ सकता है। वहीं अमर उजाला में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है जिसका शीर्षक है कि वाराणसी में भाजपा व अमेठी में कांग्रेस को झटका। इसमें वाराणसी में मोदी के गोद लिए गए गांव जयपुर में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली है तो वहीं अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।
बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब बात कर लेते हैं उन खबरों के जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नज़र।
जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक फोरम WEF अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आज दिल्ली में आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू समेत देश के करीब 300 शीर्ष हस्तियां मौजूद होंगी। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने पर चर्चा की जाएगी। चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ 5 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वो भारतीय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत देश के अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों के रूप में देखा जा रहा है। जाति आधारित कोटा के लिए आंदोलन कर रहे हार्दिक पटेल की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है जिसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई के बाद 2 दिनों के लिए उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी। ईरान के न्याय मंत्री मुस्तफा पुर मोहम्मदी आज रूस पहुंचेंगे। रूस के शीर्ष नेताओं के साथ मॉस्को में होने वाली बैठक के दौरान वो कई कानूनी और न्यायिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। इंडियन सुपर लीग का 28वां मैच दिल्ली डायनामोज FC और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा।
और अब खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। 2020 सीरीज के बाद भारत से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज भी 3-2 से अपने नाम करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम अब भारत से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच गुरुवार से मोहाली में खेला जाएगा। टेस्ट मैचों में भारत की कमान विराट कोहली संभालेंगे तो दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान हाशिम आमला के हाथों में होगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम टेस्ट मैच से पहले मोहाली में कड़ा अभ्यास कर रही है। 2020 और एक दिवसीय सीरीज में दमदार खेल दिखाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी टीम को ये चिंता खाई जा रही है कि उन्हें टेस्ट सीरीज में कैसे विकेट खेलने के लिए मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस ने कल अभ्यास सत्र के बाद कहा कि स्पिनरों के लिए अनुकूल विकेट मिलने पर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन होंगे। उनका कहना था कि भारत में पीछे पहले दिन से ही स्पिन लेने लगी हैं। उधर पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने बिलबाओ मास्टर्स फाइनल शतरंज टूर्नामेंट में अपनी अंतिम बाजी ड्रॉ खेली जहाँ उनका सामना चीन के लेरेन डिंग के साथ था। छठी और अंतिम बाजी ड्रॉ खेलने के साथ ही विश्वनाथन आनंद और लेरेन डिंग 5-5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे। दूसरी तरफ अमेरिका के वेस्ली सो ने नीदरलैंड्स के अनीस गिरी को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं शारजाह में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां कल खेल के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 222 रन बनाए थे। इससे पहले पाकिस्तान की पहली पारी 234 रन पर पहले दिन सिमट गई थी।
और अब खेल समाचारों के बाद प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पिछले सप्ताह पास किए बजट पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओवल हाउस में सोमवार को हस्ताक्षर कर दिए। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में युद्ध विराम उल्लंघन के दौरान 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की एयरलाइन सेवा का कहना है कि विमान में कोई भी खराबी नहीं थी और विमान किसी बाहरी अवरोध की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। फ्रांस के शहर लियोन की पुलिस ने 2 फ्रांसीसी पायलटों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप था और ये डोमिनिशन रिपब्लिक भाग गए थे। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज तकनीकी पक्ष संभाला हेमंत कुशवाहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। तब तक के लिए निखिल रंजन और अमल चौधरी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।